शारदा जी इस नोटिस को देखकर परेशान हो जाती हैं। उनके चेहरे पर पसीने के भाव आ जाते हैं और वो हैरान होते हुए मैनेजर साहब को देखकर कहती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये जमीन सरकारी कैसे हो सकती है। मैनेजर साहब बुजुर्ग इंसान थे और वो शुरू से ही इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उन्होंने शारदा जी से कहा, मैडम ये जमीन दरअसल एक समय पर राज परिवार की हुआ करती थी, जब यहाँ पर राजा साहब के नाना जी यानी कि ठाकुर गजेंद्र रायचंद का राज हुआ करता था। पूरे देश की तरह यहाँ पर भी अंग्रेजों का ही राज्य था। ठाकुर साहब को अपनी जनता की बहुत परवाह थी, इसीलिए उन्होंने अपनी रियासत का ये हिस्सा उन लोगों को दान में दे दिया जो लोग बेरोजगार थे। तब से इस जमीन पर छोटी छोटी दुकानें बनती आई हैं और छोटी छोटी फैक्ट्रियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन इतने सालों में भी आज तक अभी किसी के पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। ये पहली बार है जब आपके पास ये कोर्ट का नोटिस आया हुआ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब ठाकुर साहब ने ये सारी जमीन दान कर दी थी तो अब इस कोर्ट के नोटिस आने का क्या मतलब बनता है। तभी एक लड़का जो इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था वो कहता है, मैनेजर जी माना कि ठाकुर साहब ने ये सारी जमीन अपनी प्रजा को दान कर दी थी, लेकिन है तो ये जमीन अभी भी राज परिवार की ही ना। इस समय यहाँ के राजा साहब हैं आस्तिक रायचंद, यानी कि ये जमीन इस वक्त राजा साहब की है। मैडम आप एक काम कीजिए, राजा साहब से इस बारे में बात कीजिए। माना कि वे थोड़े कठोर हैं लेकिन अपनी प्रजा के लिए वो बहुत नरम दिल हैं। आप उनसे अपनी परेशानी बताएंगी तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। जमीन उनके नाना जी की थी तो अब तो ये जमीन उनकी हुई है, वो जरूर इस कोर्ट के नोटिस का कुछ करेंगे। शारदा जी को ये बात सही लगी। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बात तो वैसे सही है, देखा जाए तो एक तरह से ये जमीन राजा साहब की ही है। मैं राजा साहब से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि जमीन पर हमारा छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है। बात सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है बल्कि आप सबके परिवार की भी है। राजा साहब अपनी प्रजा को इस तरीके से बेरोजगार नहीं होने देंगे। मैं आज ही राजा साहब से बात करती हूँ। शारदा जी जल्दी से ऑटो लेती हैं और सीधे रॉयल ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। शारदा जी का ऑटो जैसे ही रॉयल ऑफिस की बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है, वैसे ही आस्तिक सीसीटीवी फुटेज में अपने लैपटॉप पर शारदा जी को ऑफिस के सामने आता देखता है। अचानक से आस्तिक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। शारदा जी सिक्योरिटी गार्ड से बात करती हैं और गार्ड उन्हें राजा साहब के केबिन के बारे में बताता है। सिक्योरिटी का प्रोसेस पूरा होने के बाद शारदा जी राजा साहब के फ्लोर पर आती हैं। बाहर राजा साहब की सिक्योरिटी उन्हें वेटिंग एरिया में रोक लेती है। शारदा जी वहीं पर लगे सोफे पर बैठ जाती हैं और राजा साहब के फ्री होने का इंतजार करती हैं। आस्तिक अपने कंप्यूटर में शारदा जी को देखे जा रहा था कि कैसे वो वेटिंग एरिया में उनका इंतजार कर रही हैं। एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पाँच घंटे हो गए थे शारदा जी को वेटिंग एरिया में इंतजार करते हुए। वो रिसेप्शन पर जाती हैं और कहती हैं, देखिए मैं पिछले पाँच घंटे से इंतजार कर रही हूँ, मुझे राजा साहब से बहुत जरूरी काम है। रिसेप्शनिस्ट शारदा जी को एक एटीट्यूड वाला लुक देती है और कहती है, सबको राजा साहब से काम है, अगर मैं हर किसी को राजा साहब से ऐसे ही मिलने दूंगी तो मुझे काम ढूंढना पड़ जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने कह दिया कि इस वक्त राजा साहब बिजी हैं, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, अगर आप इंतजार नहीं कर सकती हैं तो चली जाइए यहाँ से। दिखने में ये लड़की अरुणिमा से भी छोटी थी और शारदा जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, लेकिन इस समय शारदा जी को राजा साहब से बात करना जरूरी था, इसीलिए उसने इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। आस्तिक के पास वैसे तो बहुत सारा काम था, लेकिन आज उसने अपना सारा काम एक किनारे करके सिर्फ चुपचाप अपने केबिन में बैठा हुआ शारदा जी को अपने कंप्यूटर में देख रहा था। उसी ने अपनी रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि वो शारदा जी को वेटिंग एरिया में रोक ले और उसे तब तक न आने दे जब तक आस्तिक के ऑर्डर नहीं मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट के साथ शारदा जी की बहस को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक इंटरकॉम उठाता है और अपनी रिसेप्शन से शारदा जी को अंदर भेजने के लिए कहता है। रिसेप्शन शारदा जी से कहती है, अब आप जाकर राजा साहब से मिल सकती हैं। शारदा जी जल्दी से सोफे से उठती हैं और केबिन की तरफ चली जाती हैं। वो केबिन पर नॉक करती हैं और अंदर से आस्तिक की आवाज आती है, अंदर आ जाइए। शारदा जी डोर ओपन करके अंदर जाती हैं। एक आलिशान केबिन में आस्तिक अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ था। आस्तिक गहरी नजरों से शारदा जी को देखता है। शारदा जी आस्तिक के सामने आकर खड़ी होती हैं और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, नमस्ते राजा साहब, मेरा नाम शारदा मेहरा है। आस्तिक की निगाहें गहरी थी लेकिन उसने फिर भी अपने ठंडे लहजे के साथ कहा, बैठ जाइए। शारदा जी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और फाइल आगे करते हुए कहती हैं, राजा साहब ये कोर्ट का नोटिस आज सुबह हमारे प्रिंटिंग प्रेस में आया था, मुझे उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। आस्तिक फाइल उठाकर देखता है और पांच मिनट बाद फाइल बंद करके वापस टेबल पर रखते हुए कहता है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये पेपर तो कोर्ट की तरफ से आपको मिला है ना, आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस की ओरिजिनल पेपर कोर्ट में दिखा दीजिए, बस बात खत्म। शारदा जी परेशान होती हुई कहती हैं, दरअसल राजा साहब परेशानी की बात तो यही है, वो मेरे प्रिंटिंग प्रेस के पेपर तो मिल नहीं रहे हैं, कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन ये जमीन तो आपके नाना जी की है ना, जो उन्होंने अपनी प्रजा को दान में दिया था, और एक तरफ से देखा जाए तो ये जमीन आपकी है, इस वक्त यहाँ के राजा आप हैं तो ये जमीन कोर्ट की कैसे हो सकती है।